जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन जय जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे کرنا ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جائے رادھا گوکل آنند رادھا گوکل آنند رادھے جائے گورانیتائے جائے گورانیتائے گورانیتائے جائے گورانیتائے جایا جگنناتھ جایا جگنناتھ بلدیوا جایا سبھدرا جائے جائے پربھوپاد 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 جائے جائے پربھوپاد نیتائے گورا ہری بول ہری بول ہری بول نیتائے گورا ہری بول
جیوم وشنوپاد پرمہنس پریوراج کا چاریہ شٹوتر ستہ ہیس ڈیوائن گریس ابھے چرنار وند بھکتی ویدانت سوامی شیل پربوپاد کی جائے انت کوٹی ویشنو ورند کی جائے شری شری رادھا گوکل آنند کی جائے شری شری گور نتائے کی جائے شری شری جگنناتھ بلدیو سبھدرا میا کی جائے شریمد بھگوت گیتا کی جائے نتائے گور پریمانندے سموید بھکت ورند کی جائے سموید بھکت ورند کی جائے سموید بھکت ورند کی جائے شری شری گرو گورانگ کی جائے اوم اجان تھیمراندھسیا جانانجن شلاکیا چکشرونملتم یینا تسمی شری گروے نمہ شری چیتنیہ منوبھیشٹم ستاپیتم یین بھوتلے سویم روپ کدا مہیم دداتی سوپدانتکم وندے ہم شری گروہ شری یوت پدکملم شری گرون ویشنوامشچ شری روپم ساگرجاتم سہگن رگھناتھانویتم تم سجیوم سادویتم ساودھوتم پریجن سہیتم کرشن چیتنیا دیوم شری رادھا کرشن پادام سہگن للیتا شری وشاکھانویتامشچ نمو اوم وشنو پادایا کرشن پریشتھایا بھوتلے شری متے بھکتی ویدانت سوامی نیتی نامینے نمستے سارسوتے دیوے گوروانی پرچارنے نیرویشیش شونیوادی پاسچاتیا دیشتارنے موکم کروتی واچالم پنگم لنگھایتے گریم یت کرپاتمہم وندے شری گرون دینتارنم وانچا کلپترو بھیسچا کرپا سندھو بھیوچا پتیتانام پاونیبھیو ویشنویبھیو نمو نمہ نمو مہا ودانیایا کرشن پریم پردائیتے کرشنایا کرشن چیتنیا नामने गौरत्वशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामे भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिछले कई रविवारों से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा चल रही है। इन श्लोकों में 13वें श्लोक से शुरू होकर इस अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों के अंदर ये सारे गुण होते हैं, इसलिए वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो सच्चे भक्तों के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, इनका उल्लेख श्री कृष्ण इन श्लोकों में कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान से इन गुणों के बारे में सुनना चाहिए। और इनके बारे में थोड़ा स्मरण करना चाहिए और हमारे जीवन में कैसे इन गुणों का अनुशीलन किया जाए इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो अब तक हम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अर्थात किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम सुन चुके हैं। द्वेष करना मतलब जब हमारे प्रति कोई द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, तो उसके प्रति हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये है अद्वेष्टा। और ये समझ लेना कि ये मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मेरे जीवन में ऐसे बीत रहा है कि कोई मुझसे द्वेष कर रहा है या घृणा कर रहा है। इतना ही नहीं कि हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्तियों से मैत्री की भावना रखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति हमारे प्रति द्वेष भावना रखते हैं, यदि उनके प्रति भी मैत्री भावना हमें बनाई रखनी चाहिए तो अन्यों के प्रति तो बनाई रखनी ही चाहिए। साथ साथ श्री कृष्ण ये भी कहते हैं केवल मैत्री ही नहीं, करुणा की भावना भी रखनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति, विशेष करके जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और करुणा भाव रखने का अर्थ ये है कि हम हमेशा ये चाहें कि ऐसे व्यक्ति का कभी बुरा न हो, उसका भला ही हो। कहीं ऐसा न हो कि इसका ईर्ष्यालु स्वभाव उसे कठिनाई में न डाल दे, बल्कि ऐसे द्वेषी व्यक्ति के प्रति एक अनुकूल भाव रखना और उसे अपने कृपा का पात्र समझना, यह है करुणा। जब पिछली बार इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी, ये रेलगाड़ियां हमारे ऊपर करुणा कब करेंगे पता नहीं, तो पिछली बार हम कई उदाहरणों को देख चुके थे। करुणा भक्तों के जीवन में ये कैसे प्रकट होता है। हालांकि आज से हम निर्मम इस गुण की चर्चा करना चाहते थे, परंतु करुणा के बारे में एक और उदाहरण हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। और फिर इस एक उदाहरण के बाद हम निर्मम इस गुण की चर्चा करेंगे। करुणा के लिए जो अंतिम उदाहरण हम देना चाहेंगे वो है हरिदास ठाकुर का। जब हरिदास ठाकुर नित्य हरिनाम करते हुए दिखाई पड़े, तो उस प्रदेश के जो नवाब थे, बादशाह थे, उनके कानों तक खबर पहुंची और वहां के जो काजी थे उन्होंने शिकायत की कि ये व्यक्ति मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहा है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। जब नवाब के कहने पर हरिदास ठाकुर ने हरिनाम लेना बंद नहीं किया, बड़े साहस भरे वचनों से उत्तर दिया, तो नवाब ने काजी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। काजी ने कहा कि 22 बाजारों में इसकी पिटाई हो, क्योंकि ये काफिर है, इसकी पिटाई होनी चाहिए। तो नवाब हुसैन शाह ने, वहां के जो बादशाह थे, उन्होंने आदेश दिया उनके सिपाहियों को कि जाओ इस व्यक्ति को 22 बाजारों में पीटो। और पिटाई कैसे होती थी? चाबुक से, अन्य ऐसे अस्त्रों से। और सिपाही ले गए हरिदास ठाकुर को। ये लोग बड़े क्रूर थे और बहुत ही जोर से, पूरी ताकत लगाकर वो हरिदास ठाकुर को मारने लगे। वहां जितने लोग उपस्थित थे बाजार में, वो सब दौड़ के आए। थोड़े लोगों ने सिपाहियों से प्रार्थना की, हाथ जोड़कर, कि इनको छोड़ दीजिए, कोई सिपाहियों के पैरों में पड़े, ऐसा मत कीजिए, हमारा सारा राज्य, हमारा सारा देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसे अपराध यदि हो चुका हो गया तो। किसी ने उन सिपाहियों को श्राप दिया, परंतु सिपाही जो हैं, वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। हरिदास ठाकुर को बड़े जोर से वो मारने लगे, और जैसे वो मार रहे थे तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल कोई विरोध नहीं कर रहे थे। फिर एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाया गया, दूसरे से तीसरे, और इस प्रकार से एक के बाद एक जाते जाते 22वें बाजार तक तो पहुंचे। वो सिपाही बीच में सोच रहे थे कि हम तो थक गए, पूरी ताकत लगाकर हम प्रहार कर रहे हैं इस व्यक्ति के ऊपर, परंतु इसने एक बार भी दर्द के या दुख के वचन मुंह से नहीं निकाले, बल्कि कभी कभी हमारी ओर ऊपर देख के वो मुस्कुराता है और सदैव इसके मुंह में हरि नाम चल रहा है। अब ये तो बड़ी अजीब परिस्थिति है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कि जब हरिदास ठाकुर के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा था, तो वो अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर प्रहार करवाया था तो प्रहलाद को कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। ठीक उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी रक्षा कर रहे थे। बाद में इस लीला के समाप्ति पर चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया था अंत बहुत देर से कि देखो मेरे पीठ पे ये चाबुक के निशान है, क्योंकि मैंने स्वयं उस प्रहार को स्वीकार किया। तो हरिदास ठाकुर अपने असुविधाजनक परिस्थिति की का विचार नहीं कर रहे थे। उनके मन में केवल एक भावना थी, करुणा की भावना। किन के प्रति? इन सिपाहियों के प्रति। और जैसे ये सिपाही मारे जा रहे थे हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर निरंतर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, इन सिपाहियों को आप दंड मत दीजिए। हालांकि वो मेरे ऊपर इतना प्रहार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, परंतु इनको दंड नहीं दीजिए। ये अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। देखिए ऐसे करुणा की भावना कहां दिखाई पड़ती है? ये है करुणा की सीमा। जैसे कि वासुदेव दत्त के बारे में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, तो हरिदास ठाकुर और वासुदेव दत्त ये करुणा के सबसे बड़े उदाहरण है आधुनिक काल में। आधुनिक काल अर्थात पिछले 600-700 सालों में। तो हरिदास ठाकुर की ये भावना थी। जब 22 बाजारों में प्रहार करने के बाद भी हरिदास ठाकुर को कुछ हुआ नहीं, वो थके भी नहीं, तो ये सिपाही डर गए और आपस में बात कर रहे थे कि अरे ये व्यक्ति मर नहीं रहा है तो मृत्यु तो हमारी होने वाली है, क्योंकि जब बादशाह देखेंगे कि इस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है तो वो हमें मृत्यु दंड दे देगा। जब हरिदास ठाकुर ने ये बातें सुन ली तो हरिदास ठाकुर को बहुत बुरा लगा और करुणा की भावना जागृत हुई कि अरे मेरे वजह से किसी और को कष्ट होगा, और कष्ट की बात तो दूर है, मृत्यु दंड मिल जाएगा तो ये उचित नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे वजह से आप सबको कष्ट होगा तो ठीक है। तो हरिदास ठाकुर ने प्राण खींच लिए भीतर और एक मृत शव के समान बन गए। तो खबर पहुंची नवाब के पास कि हाँ, हमने आपके आदेश का पालन कर दिया, अभी ये व्यक्ति मर गया। उन्होंने देखा कि सांस नहीं आ रहा है तो ठीक है, मर चुका होगा। फिर नवाब ने काजी से कहा कि इस शव के बारे में क्या करना चाहिए, स्मशान में ले जाया जाए या दफना दिया जाए? तो काजी ने कहा दोनों ही नहीं, दोनों ही यदि हम करेंगे इसका मतलब है हम उसे सम्मान दे रहे हैं, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, उसे गंगा में यूं ही फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये गति उन लोगों के लिए होती है जो वास्तव में कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। तो उन्होंने जाकर हरिदास ठाकुर के शरीर को गंगा जी के तट पर रखा, और उस समय वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं प्रविष्ट हो गए हरिदास ठाकुर के शरीर में, और उनका शरीर इतना भारी हो गया कि वो साथ में मिलकर हरिदास ठाकुर के शरीर को ढकलना चाहते थे पानी में, लेकिन एक इंच भी वो शरीर हिला नहीं। फिर कृपा करके हरिदास ठाकुर पानी में गिर गए, और पानी में जब वो बहते गए पानी के प्रवाह में, तो सिपाहियों ने सोचा कि चलो हमारा काम खत्म। लेकिन हरिदास ठाकुर पानी में बहते हुए नीचे गए, फुलिया गांव में जब पहुंचे तो पुनः बाह्य चेतना में आ गए, बाहर तट पे आ गए और चलते फिरते इधर उधर घूम रहे थे, हरि नाम लेते लेते मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब खबर पहुंची सिपाहियों तक और बादशाह तक, तब वो समझने लगे कि अरे हमने बहुत बड़ा अपराध किया और वास्तव में ये सच्चे संत हैं, सच्चे पीर हैं ये। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी जब लंका गए थे समुद्र के ऊपर छलांग मारकर, तो इंद्रजीत के नाग पाश में वो पकड़े गए जबकि उन्होंने लंका जला डाला था, परंतु वो स्वेच्छा से पकड़े गए। रामायण में ऐसे वर्णन है, इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का एक वरदान मिला था, ये जो मेरा अस्त्र है ये विफल नहीं होगा, निष्फल कभी नहीं होगा, तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी जब भी तुम इस अस्त्र का प्रयोग करोगे। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखना चाहते थे, इसलिए वो पकड़े गए। अपने आप को उन्होंने इंद्रजीत के हवाले कर दिया जो कि रावण के पुत्र थे मेघनाद। और दूसरा कारण ये था कि हनुमान रावण को देखना चाहते थे कि ये कौन है ये व्यक्ति जिसने हमारे सीता देवी का अपहरण कर लिया है। तो अपनी इच्छा से हनुमान जी इंद्रजीत के पकड़ में आ गए, अन्यथा इंद्रजीत की ये ताकत नहीं थी या किसी की भी ताकत नहीं थी कि वो हनुमान को पकड़ ले। ठीक उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि यदि हरिदास ठाकुर चाहते तो सिपाहियों से मुक्त कब के हो गए होते, परंतु उनके माध्यम से श्री कृष्ण उपदेश सारे जगत को देना चाहते थे। वो उपदेश क्या था? पहली बात कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को हरिनाम लेना छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात, कभी कभी ऐसे देखा जाता है भक्तों के समाज में भी, जब कोई व्यक्ति मंदिर में आके भक्तों के संग में प्रेरित होकर हरिनाम लेना शुरू कर देता है और कोई कठिनाई जीवन में आती है तो हैरान होकर हताश होकर वो जप करना छोड़ देता है, कीर्तन में आना छोड़ देता है। तो हरिदास ठाकुर के उदाहरण से भगवान हम सबको सिखलाना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान का नाम लेना छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो हरिदास ठाकुर के माध्यम से श्री कृष्ण हम सबको सिखलाना चाहते हैं कि करुणा की सीमा क्या है, हमारे हृदय में भी अन्यों के प्रति करुणा की भावना कैसे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर हम सबके लिए बहुत एक श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये रहे करुणा के उदाहरण। और आगे श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि भक्त के अंदर निर्ममता होनी चाहिए। निर्ममः, ममः मतलब मेरा और निर मतलब नहीं, मेरा नहीं, इस ममत्व के भावना को त्याग देना या स्वामित्व के भावना को त्याग देना कि ये सब मेरी संपत्ति है, ये मेरा है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि निर्ममः का अर्थ है कि शरीर के दुखों से कठिनाइयों से विचलित नहीं होना, ये जानकर कि मैं शरीर नहीं हूं। बलदेव विद्याभूषण भी ये कहते हैं कि निर्ममः का अर्थ होता है कि ये जान लेना कि ये स्वामित्व की भावना नहीं बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब इस शरीर से संबंधित है और ये शरीर, ये कुटुंब, ये धन आदि ये मेरी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की संपत्ति है और भगवान की संपत्ति है। प्रकृति के परिवर्तनों से ये सब बनते हैं, ये शरीर है, किसी और का शरीर है, हमारा धन है, घर है, ये सब प्रकृति के विविध रूप हैं, ये भगवान की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है, ये समझना। और साथ साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं निर्मम का अर्थ होता है कि हमारे परिवार आदि के प्रति भी स्वामित्व की भावना नहीं रखना, ये मेरे बच्चे हैं इसलिए मेरा अधिकार उनके ऊपर है, ये मेरे पति हैं या मेरी पत्नी हैं इसलिए ये मेरे संपत्ति हैं, ये मेरा धन है तो ये मेरी संपत्ति है। तो हमारे धन, हमारे परिवार, हमारे घर आदि के ऊपर स्वामित्व की भावना नहीं रखना, ये है निर्ममः। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को कहते हैं, पुंस स्त्रिय मिथुनी भावमेतम तयोर मिथ हृदय ग्रंथिम आहुः, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो यम अहम ममेति। वो कहते हैं कि जब इस संसार में पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण हो जाता है और लगाव हो जाता है तो इस हृदय में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही सख्त गांठ बन जाती है, और उसके बाद अतः तत्पश्चात गृह क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात हमारे जीविका का साधन, हमारे जमीन आदि, सुत अर्थात हमारे बच्चे, आप्त हमारे रिश्तेदार, वित्त अर्थात हमारा धन, इन सब के पीछे, इन सब को प्राप्त करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। जनस्य मोहो, इस प्रकार से लोग मोह में पड़ जाते हैं। किस प्रकार का मोह? अहम मम इति, मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरे हैं, जो भी मेरे शरीर से संबंधित हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मेरी है। अहम और मम, ये समस्या के कारण हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ही स्वयं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब वो सूर्य ग्रहण के लिए जाते हैं वो उपदेश देते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत् तीर्थ सलिले न करहि बुद्धि न करहि चेज जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मनुष्य गाय या गधे के समान है जो कि, पहली बात, यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जो अपने आप को इन तीन धातुओं से बना हुआ शरीर समझते हैं, कफ वात पित्त, अपने आप को शरीर जो आदमी समझता है वो इंसान नहीं है। कृष्ण कहते हैं क्योंकि इंसान होने के नाते उसे समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है जो कि इन तीन धातुओं से बना हुआ है वो ज्ञान में स्थित नहीं है। दूसरी बात, स्वधि कलत्रादिषु, ऐसी धी या ऐसी बुद्धि या ऐसी भावना कि कलत्र आदि, ये पत्नी आदि, ये सब स्व, ये सब मेरे हैं। तीसरी बात, भौम इज्यधि ही, क्योंकि मैंने इस भूमि में जन्म लिया है तो ये पूजनीय है क्योंकि ये मेरे शरीर से संबंधित है। और चौथी बात, यर्थ तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चिज जनेषु अभिज्ञेषु, तीर्थ स्थानों में जाना वहां भक्तों के संग करने के लिए नहीं, भक्तों के पास जाकर श्रवण कीर्तन करने के लिए नहीं, केवल किसी पवित्र स्थान में स्नान करके चले आने के लिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों में जगह जगह बताया हुआ है कि ये देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना और शरीर से संबंधित जो भी हैं उनको अपना समझना, ये मोह है। जनस्य मोहो यम अहम मम इति, तो ये भावना व्यक्ति को बांध के रखता है इस सृष्टि में। व्यक्ति नहीं सोचता है कि वास्तव में ये सब चीजें ऐश्वर्य या समृद्धि के या सफलता के लक्षण नहीं है, ये केवल बंधन के कारण है, हमें पुनर्जन्म लेने पर बाध्य करते हैं और ये सब माया के प्रलोभन हैं, ये माया की सृष्टि है, सपने के समान है। सपने के अंदर जब हम कोई भोग करते हैं तो उसके बराबर है ये। जागृत अवस्था में भी शारीरिक भाव में यदि कोई भोग करना चाहता है तो वो स्वप्न अवस्था में भोग करने के बराबर ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते। वो कहते हैं कि निराकार में लीन होना ये तो एक नारकीय अवस्था है, और त्रिदशपुर स्वर्गलोक आदि और वहां जो ऐसे लोकों में भोग उपलब्ध है, आकाश पुष्पायते, वो आकाश पुष्प के समान है। पुष्प या फूल कहाँ पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है ना, किसी वृक्ष में या जमीन में कोई पौधा होता है। आकाश में तो कोई पुष्प नहीं होता ना। आकाश में पुष्प का मतलब है ये एक भ्रम है, एक सपना है। तो ये जो ममत्व की भावना है यहाँ, जो कि हमारे शरीर से संबंधित है, ये भी एक भ्रम है, सत्य नहीं है। और क्योंकि ये सत्य नहीं है, हमारे दुख का कारण बनेगा। सदा समुद्विग्न धियात असत ग्रहात। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति असत को ग्रहण करते हैं उनका चित्त सदा समुद्विग्न रहता है, विचलित रहता है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज के कथा में कि जब उनका पुत्र का देहांत हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, उनको और उनकी रानी को। उन्होंने बड़े लंबे समय के बाद बहुत कठिनाई से एक पुत्र को प्राप्त किया था और अब वो पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या किया जाए? जितने खुश वो थे पुत्र के जन्म के समय, अब उससे ज्यादा और दुखी हो गए। यही संसार का नियम है। जितनी ज्यादा आसक्ति हमारे मन में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति रहती है तो जब वो हमसे छीन ली जाती है तो उतना ही ज्यादा दुख हमें होता है। तो दुख से बचना है तो आसक्ति से बच के रहना चाहिए। और फिर नारद मुनि की कृपा से वो जीव फिर से उस शरीर में आता है और कहने लगता है कि आपने क्यों बुलाया मुझे? अरे हम तुम्हारे पिता हैं, माता हैं, देखो तुम्हारी माँ रो रही है, लेकिन आगे मेरी माँ और पिता तो राह देख रहे हैं मेरे लिए, उनको निराश करना होगा यदि मुझे देर हो गई जाने में तो। और पिछले जन्म में भी तो मैं किसी माता और पिता को छोड़कर आया था, तो कौन सही माता पिता है, कौन मेरे भाई बहन है? तो इस प्रकार से उपदेश देकर वो उनको समझाते हैं कि देखो ये जो संसार में मेरा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा है, ये भ्रम है। कौन किसका है इस जगत में? कस्य त्वं कुत आयात। शंकराचार्य कह रहे तुम कौन हो, किसके हो, तुम कहां से आए हो? चिंतय हे तदि हे भ्राता, हे मेरे भाई इसके बारे में चिंतन करना। कई लोग ये पूछते हैं कि पिछले जन्म की बातें हमें याद क्यों नहीं आती हैं? भगवान की कृपा है, क्योंकि यदि हमें याद आए होते तो हम पूरी तरह से भ्रांति में पड़ जाते। कौन सा हमारे परिवार है? इस जन्म के जो लोग हैं ये हमारे परिवार हैं? पिछले जन्म के लोग हमारे वो सही परिवार है, या उसके पहले जन्म में जो लोग थे हमारे साथ में वो मेरा परिवार है? सच्चा परिवार क्या है? व्यक्ति को अपने स्वरूप या अपने अस्तित्व के बारे में ही भ्रम हो जाता था, मानसिक तनाव बहुत हो जाता था। इसलिए भगवान की कृपा है कि हम ये सब चीजें याद नहीं कर पाते हैं। इस जीवन की समस्याएं हमारे लिए काफी है। तो इसलिए हर जीवन में अहम और मम ये बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। इसलिए जो भी है पहला कदम निर्मम का ये है, ये समझना कि ये किसका है। मेरा नहीं है तो किसका है? भगवान का है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलुं तुआ पदे नंद किशोर। कि हे श्री कृष्ण, हे नंद किशोर, नंद महाराज के तरुण पुत्र, मेरा मन, मेरा देह, मेरा गृह, जो भी कुछ मेरा है, मैं अभी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो यही हमारे लिए एक मार्ग है। और श्री प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्यों में बताते हैं कि वास्तव में भगवान को देने के लिए हमारा क्या है, हमारा तो है ही नहीं वो। तो भगवान की वस्तुओं को हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इतना ही है। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी चीज को त्यागना या जो वैराग्य है, ये है ही नहीं। वैराग्य नाम की चीज ही नहीं हो सकती है एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि हम उसी चीज को त्याग सकते हैं जो कि हमारा है। जब हमारा नहीं है तो हम क्या त्यागेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस तथ्य को भले भांति जानते हैं और इस संसार के संपत्ति को मिथ्या समझकर, इस संसार के संपत्ति को बंधन का कारण समझकर और इन चीजों को कृष्ण की संपत्ति समझकर वो केवल कृष्ण को और कृष्ण के चरण कमलों को अपनी संपत्ति मानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। केवल हमारे संपत्ति से निरासक्त होना काफी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव को कुछ तो चाहिए, किसी एक चीज के ऊपर स्वामित्व होना चाहिए। यदि कोई जंगल में रहने वाला वैरागी हो, कम से कम उसको अपने पास कमंडलू तो रहता है, उसका उसका एक पेड़ रहता है जिसके नीचे वो रहता है, शरीर रहता है, कुछ तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम किसी चीज को त्यागते हैं तो किसी अन्य श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए करते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपने बचपना को त्याग देता है, जब थोड़ा समझदार हो जाता है, सोचने लगता है कि नहीं, अभी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अब ये बचपना छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी जीवन त्याग करके फिर आगे और बढ़ जाता है, नहीं अभी मुझे संसार में प्रवेश करना चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अब मेरा परिवार है तो इस अवस्था के अनुसार मुझे जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। तो किसी श्रेष्ठ स्तर में प्रवेश करने के लिए निम्न श्रेणी की जो अवस्था है उसको त्यागता है व्यक्ति। एक कर्मचारी कभी कभी एक मालिक को त्याग कर दूसरे मालिक की सेवा को स्वीकार करता है, क्योंकि वो सोचता है कि दूसरे मालिक की सेवा करने से वेतन या तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए, जो भगवान के लिए इस संसार को त्यागते हैं, वो यूं ही नहीं त्यागते हैं, एक बहुत मूल्यवान आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए ऐसा त्याग करते हैं। और अंततः उनका नुकसान कभी नहीं होता है, उनको बहुत बड़ी चीज प्राप्त होती है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय। वित्त, वित्त मतलब धन, वित्ताय मतलब आपको, जो कि अकिंचनों के धन हैं। नमः, मैं नमन करती हूं हे कृष्ण आपको, जो कि अकिंचन व्यक्तियों के धन हैं। अकिंचन कौन होता है? जिसके पास भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं होता, जिसके जेब खाली, कम से कम मानसिक दृष्टि से जेब खाली। भले जेब खाली हो या न हो, लेकिन विचार ये होना चाहिए कि मेरी नहीं है। यदि किसी का जेब खाली है लेकिन उसकी लालसा मन में बहुत है धन एकत्र करने के लिए, तो वो अकिंचन नहीं कहलाता। और किसी के जेब भरे हैं परंतु वो जानते हैं कि ये कृष्ण की है और कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो अकिंचन है।
तो केवल जेब खाली या भरे रहने की बात नहीं है, हमारी मनोवृत्ति की बात है। यदि हम समझ लेते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, और कभी कभी ऐसे अकिंचन व्यक्तियों के पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता भौतिक, परंतु ऐसे व्यक्तियों के पास श्री कृष्ण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण उनकी संपत्ति होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे अकिंचन अन्यों को कोई भौतिक चीज देने में आतुर नहीं होते हैं, नहीं वो देना चाहते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जो अकिंचन है वो सारे दुनिया को सबसे मूल्यवान भेंट प्रदान कर सकता है, सबसे मूल्यवान और श्रेष्ठ संपत्ति दे सकता है, और वो क्या है? वो कृष्ण है, जो कि ऐसे अकिंचनों के धन हैं, उनके संपत्ति हैं। तो ऐसे अकिंचन जो हैं, वो हमको कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके पास हैं, कृष्ण उनकी संपत्ति हैं, क्योंकि उन्होंने इस संसार के ममत्व को त्याग के कृष्ण के प्रति ममत्व की भावना कर ली है। तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था भौतिक है, ये मेरा है सब, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, तो ये झूठा ममत्व है। जब व्यक्ति इस झूठे ममत्व को त्याग कर कृष्ण भक्ति में चले आता है, फिर वो स्वीकार करता है, मैं कृष्ण का हूं, तब अस्मि, मैं आपका हो गया। इससे भी आगे बढ़ के जब व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं कि केवल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, कृष्ण उनकी संपत्ति बन जाते हैं। वो केवल अपने आप को कृष्ण की संपत्ति नहीं मानते हैं, प्रेम इतना तीव्र हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, इतना मधुर हो जाता है कि भक्त भगवान को ही अपनी संपत्ति मानने लगता है, और भगवान वास्तव में हो जाते हैं उसकी संपत्ति। विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भगवान ऐसे भक्त को भक्त के हवाले अपने आप को कर देते हैं, बेच डालते हैं भक्त को। और खरीदने की कीमत क्या होती है? भक्ति। भक्त के पास प्रेम होता है और भगवान ऐसे प्रेम से खरीदे जाते हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्था में जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, बाहरी रूप से गरीब क्यों न दिखें, लेकिन हैं सबसे अमीर, क्योंकि उनके पास कृष्ण है और वो कृष्ण को हमें दे सकते हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागर, हे दासे करुणा करी। भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, वैष्णव गोसाई को प्रार्थना करते हैं। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो, तुमार शक्ति आछे, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दैतव पाछे पाछे। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्त को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप कृष्ण को दे सकते हैं क्योंकि आपके पास कृष्ण है, आपकी शक्ति है। कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, आपकी वो शक्ति है कि आप हमें कृष्ण दे पाओ, कृष्ण आपकी संपत्ति है। और मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कृष्ण नहीं है, तो मैं वास्तव में दीन हूं, इसलिए कृष्ण कृष्ण कहकर मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं इस भिक्षा के लिए कि आप मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है संसार में। जिसके पास कृष्ण है वो सबसे धनी व्यक्ति है, उसकी संपत्ति सबसे अधिक है। जिसके पास कृष्ण नहीं है वो गरीब है, दीन है, भले वो भौतिक दृष्टि से करोड़पति भी क्यों न हो। कभी कभी भौतिक लोगों को समझ में नहीं आता कि भक्तों का धन क्या है, भक्तों के पास कितनी समृद्धि है। श्रीधर खोलावेचा ऐसे ही एक अकिंचन भक्त थे जो नवद्वीप में रहा करते थे। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु वहां रोजाना जाया करते थे और रोज प्रतिदिन जाकर बहस करते थे श्रीधर खोलावेचा से। श्रीधर खोलावेचा एक छोटे से व्यापारी थे, केले के पत्ते, केले के फल, केले के मूल आदि वो बेचा करते थे और बहुत ईमानदार व्यापारी थे। बहुत कम दाम में बेचते थे और जो भी उनको मिलता था, जो उनकी कमाई होती थी, 50% गंगा जी की सेवा के लिए इस्तेमाल करते थे और जो थोड़ा कुछ 50% बचता वो अपने जीवन यापन के लिए रख देते थे। वास्तव में थे बहुत गरीब। उनके घर के छत में छेद थे, उनके पास कोई बर्तन वगैरह कुछ नहीं थे, उनके कपड़ों में भी छेद थे, ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, परंतु सबसे बड़ा धन कृष्ण प्रेम का उनके पास था। कृष्ण उनकी संपत्ति हो गए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर्षित होकर वहां पर जाते थे प्रतिदिन। और उनकी लीला थी कि श्रीधर खोलावेचा के साथ में वो बहस करके कम दाम पर, कम कीमत पर चीजों को छीन लेते थे। दोनों में दिन हर दिन ऐसे तर्क होते रहता था। श्रीधर, मैं जानता हूं तुम तो अपने आप को गरीब कह के समाज के सामने पेश कर रहे हो, तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, छुपा के रखा है तुमने, और एक दिन मैं इसका खुलासा करूंगा, सारे दुनिया के दिखाऊंगा कि तुम्हारे पास कितना धन है। बेचारे श्रीधर भोले थे, समझ नहीं पाए कि किस दृष्टि से महाप्रभु बोल रहे हैं। वो कहने लगे, मेरे पास नहीं धन है, आओ मेरे घर में देखो क्या, आओ आओ देखो क्या है मेरे पास, नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास है, और एक दिन मैं ये रहस्य सबको खोल के दिखाऊंगा। तो फिर निमाय पंडित कहने लगे, नहीं ऐसी बातों से ये नहीं सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ, कितने दाम में दोगे बोलो? ये इतने दाम, ये तो बहुत हो गया, इसे आधा। चलो, अरे आधा? पहले भी इतने कम दाम में दे रहा हूं और इससे भी आधा लोगे? तो ऐसे दोनों के बीच में वाद चलता रहता था। कभी कभी श्रीधर खोलावेचा सोचते थे कि अब ये ब्राह्मण जो है उसका भाव देख के थोड़ा डर लगता है, कहीं ये हमारी पिटाई ना कर ले एक दिन, है तो बड़ा लंबा चौड़ा, कुछ पिटाई भी कर ले, क्या पता, ये रोज आके मुझे परेशान करता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये व्यक्ति आता है रोज मेरे साथ तर्क करता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है ब्राह्मण, ये ले लो, ये मुफ्त में ले लो, आ चलो ले लो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो अच्छा माल देना। हाँ, कह दिया, मुफ्त में दिया ठीक है, लेकिन अच्छा होना चाहिए, देखो केला वेला अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए। तो ऐसे कह के निमाय पंडित वहां से निकल जाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीधर खोलावेचा वास्तविक एक अकिंचन थे, कुछ नहीं होते हुए भी उनके पास सब कुछ था। निर्ममा, निर्ममा का बहुत ही एक अच्छे उदाहरण थे। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है नमो अकिंचन वित्ताय, कि हे कृष्ण, आप जो कि अकिंचनों के धन हैं, आपके चरणों में मैं नमन करती हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी और उस पारस मणि का। सनातन गोस्वामी के पास एक पारस मणि थी, ऐसा सुनकर एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि मैंने सुना आपके पास पारस मणि है, मुझे दे दीजिए। सनातन गोस्वामी ने समझ लिया कि इस व्यक्ति के हृदय में भौतिक कामनाएं बहुत हैं। हाँ वहां पे कूड़े का कूड़ा दान है, उसमें जाके ले लो। कूड़े दान में पारस मणि? तो खैर वो चला गया, वहां से लेकर आया, मैं ले लू, हाँ रख लो पारस मणि, हाँ ठीक है रख लो कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी अच्छी तरह से जानते थे कि ये तो मेरा नहीं है और ये चीजें क्या है, बंधन है हमारे लिए। तो व्यक्ति ले गया फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि धन से कौन संतुष्ट हो सकता है इस जगत में। फिर से सोचा, सोच रहा था कि ये जो महात्मा थे उन्होंने पारस मणि मुझे दे दी और फिर भी बड़े शांत थे, इसका मतलब है उनके पास और भी कोई बड़ा धन है जो कि पारस मणि से अधिक मूल्यवान है, इसलिए उन्होंने ये पारस मणि मुझे आसानी से दे दी। नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो यूं ही एक पारस मणि दे देगा किसी को। और जब वो चले आए तो सनातन गोस्वामी ने उनको हरि नाम दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो हरि नाम और श्री कृष्ण दोनों हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान धन हमें बनाने चाहिए। हमें धनी होना चाहिए लेकिन सही धन कौन सा है ये समझ लेना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण ए मोर प्राण धन। वो कहते हैं मेरा धन क्या है, नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण के श्री चरण जो है, चरण कमल है, वो वास्तव में मेरे धन है। और वो राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि कृपया ऐसा ऐश्वर्य ऐसी संपत्ति मुझे दीजिए, केवल आपके चरण कमल ही मेरी संपत्ति होनी चाहिए, बस और कोई संपत्ति मैं नहीं चाहता। और वो कहते हैं अधन यतन कोरी धन त्यागिनु, अपने आप को दीन भाव में रख के नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अधन को जो धन नहीं है, यतन कोरी मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं इस अधन को प्राप्त करने के लिए। अधन क्या है, इस संसार का धन। इस संसार के धन को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, जो अधन है वास्तव में जो धन नहीं है। परंतु धन त्यागिनो और जो सच्चा धन है आपके चरण कमल, आपकी भक्ति, आपका नाम, उनको मैं त्याग रहा हूं। देखिए मेरी क्या दुर्दशा है। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर नम्र भाव को स्वीकार करके प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे गौरांग महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, हे अद्वैत आचार्य, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, आपके चरण कमल मैं स्वीकार करना चाहता हूं मेरे सर पे, मेरी एकमात्र संपत्ति समझकर। तो आपके चरण कमल ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, ये ममत्व की भावना मेरी है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उस तात्पर्य में कि जो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी इसी प्रकार से ऐसे महान वैष्णवों के और भगवान के चरण कमलों को अपना एकमात्र धन और संपत्ति मान लेना चाहिए। और यही एकमात्र प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए कि हे श्री श्री राधा गोकुलानंद, आपके चरण कमल ये हमारे संपत्ति बन जाए। इस दुनिया की संपत्ति से हमें कोई लोभ नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल आपके चरण कमलों को के प्रति ये ममत्व की भावना हम बनाए रखना चाहते हैं। तो ये भावना अगर हमारे अंदर रही तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। यूं ही एक नकारात्मक भाव से भौतिक चीजों के प्रति निर्ममत्व को जागृत करने का प्रयास असफल होगा, परंतु भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए और उनके ममत्व के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो संसार के चीजों के प्रति जो ममत्व है अपने आप ही चले जाएगा, तो हम भी निर्ममः हो सकते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण यहां पर चाहते हैं कि भक्तों के अंदर हो। तो हम सबके पास ये धन है, प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने श्री राधा कृष्ण को पहुंचाया है हम तक, उनके विग्रह, उनके नाम, उनका प्रसाद, उनके भक्तों का संग, उनकी वाणी गीता भागवत शास्त्रों के द्वारा, तो इस धन का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने आप को भी हमें बहुत धनी बना लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।